पृष्ठ संख्या 315, अध्याय 21। अध्याय शीर्षक है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, जो कि विश्व धर्म के विकल्प के रूप में विश्व के विभिन्न धर्मों में, चाहे वे ईश्वरवादी रहे हैं या अनिश्वरवादी, एक आध्यात्मिक तलाश और परिपूर्णता देखी जाती है। उन धर्मों का कोई अन्य विकल्प नहीं हो सका है। फिर विश्व के इन धर्मों की बड़ी कमियां देखी गई हैं और इसका मुख्य कारण है विज्ञान की आशातीत प्रगति और अनुभववादी दृष्टिकोण। अनुभववादी प्रभाव ने इन धर्मों की मनमानी छानबीन की है, नुक्ताचीनी की है, इसे मानव जीवन के लिए घातक समझा गया है, दकियानुसी माना गया है, धर्म को पिछड़ापन कहा गया है। ऐसा मानने के कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि इन धर्मों ने विश्व के मानव को सदैव से ही संघर्ष में डाला है, संकीर्णता और कसमकस के गर्त में डाला है, निरीह मानव को विपत्ति में डाला है। इसने जितना मानव का हित नहीं किया है, उससे अधिक उसका अहित किया है। मनुष्य का इतिहास बताता है कि धर्म के नाम पर युद्ध किए गए और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याएं पैदा हुई। धर्म ने मानव जात को अनेक गुटों, वर्गों तथा समूहों में बांटा है। स्वयं स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि धर्म से बढ़कर ऐसा कुछ नहीं है जिसने मनुष्य मनुष्य के बीच बंधुत्व उत्पन्न किया हो। धर्म से बढ़कर ऐसा कुछ नहीं है जिसने मनुष्य मनुष्य के मध्य शत्रुता उत्पन्न की हो। धर्म ने ही मनुष्य के लिए दान, औषधालय तथा अन्य संस्थाओं का निर्माण किया है। और यह भी सत्य है कि धर्म ने ही संसार को रक्त की सरिता में बहा दिया है। यही कारण है कि कुछ लोग विश्व के विभिन्न धर्मों के स्थान पर एक ऐसे विश्व धर्म की खोज में लग गए जिसका मूल उद्देश्य मानव कल्याण, मानव हित हो। मानवतावाद ऐसे ही धर्म का एक विकल्प माना गया है। मानवतावाद विज्ञान और उससे उत्पन्न अनुभववाद, जो कि दृश्य जगत को सत्य मानता है, का फल है। अब अगला शीर्षक है अर्थ एवं परिभाषा। मानवतावाद वह मत है जो मनुष्य तथा मनुष्य की महत्ता और उसके गुणों में, अर्थात मानवता में आस्था और विश्वास करता है। मानवतावाद जीवित मानवता से प्रेम है। मानवतावाद का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यह मनुष्य के अस्तित्व, उसकी स्वतंत्रता तथा उसके कल्याण का पक्षपाती है। कार्लिस लेमांट के अनुसार मानवतावाद विश्व बंधुत्व, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री और मनुष्य के भ्रातृत्व का समर्थक है। मानवतावाद की इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि विश्व में मानव का स्थान ही सर्वोपरि है। मनुष्य चाहे जिस देश और स्तर का हो, उसके प्रति श्रद्धा और उसका हित साधन ही सर्वोपरि होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 316। विश्व धर्मों में मनुष्य के अतिरिक्त सर्वोपरि स्थान अतीन्द्रिय सत्ता को दिया जाता है तथा मोक्ष जैसी परिकल्पना में मनुष्य को उलझाए रखा जाता है। मनुष्य की पूर्णता ईश्वर जैसी सत्ता के हाथ में रहती है, अतः मनुष्य गौण हो जाता है और उसके स्थान पर ईश्वर तथा अन्य देवी देवता पूज्य माने जाते हैं। मनुष्य का गौरव नगण्य हो जाता है। ऐसी दशा में मनुष्य की गरिमा पुनः लौटानी है। मानवतावादी धारणा का यही मूल मंतव्य है। अब अगला शीर्षक है मानवतावाद की शाब्दिक उत्पत्ति। मानवतावाद को अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ह्यूमनिज्म शब्द ह्यूमैनिटाज से उत्पन्न हुआ है। ह्यूमैनिटाज का अर्थ मनुष्य की शिक्षा से लिया जाता है, अर्थात मनुष्य की ऐसी शिक्षा जो उसे बर्बर न रहने दे, उसका व्यवहार अनुशासनबद्ध हो, ऐसा प्रशिक्षित और दीक्षित हो कि मनुष्य के अनुकूल व्यवहार कर सके। उसके व्यवहार से ही उसकी श्रेष्ठता प्रकट हो सके। अतः इससे यही सिद्ध होता है कि मानवतावाद मनुष्य की बर्बरता से मुक्त करने का आग्रह करता है। अब शीर्षक है धर्म के रूप में मानवतावाद। अत्याचार, निर्दयता, सांप्रदायिकता आदि सभी मानवता के विपरीत व्यवहार है। मनुष्य के प्रति असहिष्णु होना मानवतावाद को स्वीकार नहीं है। बर्बरता या असहिष्णुता किसी भी क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। यदि धर्म में सांप्रदायिकता और बर्बरता है तो वह मानवतावाद को स्वीकार नहीं है। परंतु विश्व धर्मों में जो संस्थागत भी है, सांप्रदायिकता देखी जाती है। इनमें समन्वय की कोई गुंजाइश नहीं है। संस्थागत धर्म रक्त रंजित होते हैं, उनमें सहिष्णुता का उपदेश तो है, परंतु संप्रदाय विशेष होने के कारण उनका बर्बर और असहिष्णु होना निश्चित है। सहिष्णुता मानवतावाद का पर्याय है। अच्छा यही है कि इन संप्रदाय विशेष वाले धर्मों के स्थान पर सहिष्णुता के पोषक और समर्थक मानवतावाद को ही धर्म का स्थान दिया जाए। यही विश्व धर्म का स्थान ले सकता है। अब अगला शीर्षक है मानवतावाद के प्रमुख सिद्धांत या विशेषताएं। मानवतावाद की मुख्य विशेषताओं का सिद्धांतों के आलोक में भी इसको अच्छी तरह समझा जा सकता है। यद्यपि मानवतावाद के समर्थकों में भी मतभेद है, फिर भी उसका उद्देश्य एक ही है, मानव जाति का गौरव और उसका हित। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए मानवतावाद के मूल मंतव्यों को निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है। इसमें पहला है मानवतावाद मानव की समस्याओं को प्रमुख स्थान देता है। मानव की स्वतंत्रता, उसका गौरव, उसका हित इसका लक्ष्य माना गया है। इसका संबंध तत्वशास्त्र की मीमांसा करने से नहीं है। दूसरा है मानवतावाद मानव मात्र के भ्रातृभाव का समर्थक है। विश्व बंधुत्व, मैत्री संबंधी तथा मानव के दुखों का निवारण तथा उसमें मानवीय गुणों, सहिष्णुता, समता, सहयोग आदि का प्रादुर्भाव चाहता है। बिंदु तीसरा है मानवतावाद मानव से उच्च किसी सत्ता के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर लेने पर मनुष्य गौण हो जाता है और ईश्वर ही सब कुछ बन जाता है। मनुष्य की गरिमा स्वतः सिद्ध है, किसी बाह्य सत्ता की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य में ऐसे गुण मौजूद हैं जो आदरणीय है, उसके लिए ईश्वर को मानना आवश्यक नहीं है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। बिंदु चौथा है, मनुष्य में नैतिक गुण मौजूद हैं, उनका विकास और प्रसारण करना मानवतावाद का लक्ष्य है। इसके लिए आत्मा और उसकी अमरता, कर्मवाद तथा ईश्वर की सत्ता को मानना आवश्यक नहीं है, क्योंकि नैतिकता का निर्धारण तो संवेगों से होता है। नैतिकता के आधार मनुष्य के भीतर ही हैं, जैसे स्नेह और मैत्री के भाव। पृष्ठ संख्या 317। अब बिंदु पांचवा है, चूंकि मानववाद मनुष्य के कल्याण को अपना उद्देश्य मानता है, इसलिए वह अन्य मूल्यों, भौतिक, बौद्धिक, सौंदर्य, आध्यात्मिक की अपेक्षा नैतिक मूल्यों को विशेष महत्व देता है। छठवां है, मानवतावाद मनुष्य के जीवन को सुखी बनाना चाहता है। मनुष्य का सुख इसी विश्व में है, सुख के लिए किसी अन्य लोक की कल्पना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का सुख मानव जात के सुख से जुड़ा है। हम सुखी तभी रहेंगे जब मानव जात सुखी रहेगी। स्वार्थ हमारे सुख को छीण करता है, अतः मानव जाति में मैत्री, सहयोग, सेवा अपेक्षित है। अब अगला शीर्षक है, कार्लिस लेमांट के अनुसार मानवतावाद की विशेषताएं। अमेरिकी दार्शनिक कार्लिस लेमांट अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म में मानवतावाद की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। इसमें पहला है, मानवतावाद प्रकृतिवादी तत्वशास्त्र में आस्था रखता है। प्रकृतिवाद वह सिद्धांत जो प्रकृति के नियमों में विश्वास करता है, किसी बाह्य सत्ता को स्वीकार नहीं करता, को स्वीकार करने के कारण इसमें किसी अतींद्रिय या दैवी सत्ता को महत्व नहीं दिया जाता। प्रकृति जड़ शक्तियों की समष्टि है और वह अपने ही नियमों से संचालित होती है। दूसरा है, मानवतावाद यह मानता है कि मनुष्य प्रकृति की उपज है। मनुष्य इस विकासात्मक प्रकृति से उद्भूत हुआ है। देह और मस्तिष्क के विनष्ट होने पर अर्थात मृत्यु के पश्चात चेतना का लोप हो जाता है। शरीर से भिन्न किसी आत्मा का अस्तित्व नहीं है। किसी मरणोत्तर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानवतावाद और जड़वाद में अंतर इसलिए है कि जड़वाद चेतना को स्वीकार नहीं करता, जबकि मानवतावाद मानता है कि जड़ और चेतन के बीच किसी प्रकार का अंतर नहीं है। इसमें चेतना को स्वीकार किया गया है। तीसरा है, मानवतावाद यह मानता है कि मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्ति और क्षमता से अपनी समस्याओं का समाधान विज्ञान की सहायता से स्वतः कर सकता है। मनुष्य की बुद्धि और वैज्ञानिक विधि मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। चौथा है, मानवतावाद मनुष्य की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। मानवतावाद में भाग्यवाद, दयावाद या नियतिवाद को अस्वीकार किया जाता है। मानव किसी पर निर्भर नहीं है, उसकी स्वतंत्रता अक्षुण है। मनुष्य सृजन कर सकता है, उसे अपने कार्यों के चुनाव की स्वतंत्रता है। वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। मानवतावाद के नैतिक मूल्य का आधार सांसारिक अनुभव और संबंध है। इसका नैतिक आदर्श सांसारिक सुखों को प्राप्त करना है। इसका विश्वास है कि मनुष्य चाहे जिस देश, जाति या वर्ग का हो, उसे आर्थिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक सुख प्राप्त होना चाहिए। स्वतंत्रता तथा प्रगतिशीलता मनुष्य का लक्ष्य है। मानवतावाद किसी धर्म और ईश्वर तंत्र को स्वीकार नहीं करता। इस अर्थ में इसे धर्मनिरपेक्षतावाद कहा जा सकता है। बिंदु छठवां है, मानवतावाद मानव के व्यक्तिगत विकास, संतोष तथा व्यक्तित्व के विकास को महत्व देता है। मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास समाज के अन्य व्यक्तियों के हित और सेवा के कार्यों द्वारा कर सकता है। अर्थात मानवतावाद के अनुसार मनुष्य व्यक्तिगत जीवन का सुख और व्यक्तित्व की पूर्णता बिना लोक सेवा के नहीं प्राप्त कर सकता। पृष्ठ संख्या 318, बिंदु सातवां है, मानवतावाद मानव की सृजनात्मकता में विश्वास करता है। कला, साहित्य तथा सौंदर्य की चेतना का विकास होना चाहिए। मनुष्य का जीवन पशु से भिन्न है, उसे सौंदर्यात्मक अनुभव का वाहक कहना चाहिए। उसका जीवन सौंदर्य से अभिभूत होना चाहिए। मानव आदर्श मनुष्य का प्रेरक बने। मनुष्य केवल पशु वृत्ति से ही संतुष्ट नहीं होता, अतः उसकी बुद्धि, विवेक तथा कल्पना शक्ति का उपयोग होना चाहिए, जिससे उसकी सर्जना क्षमता को बढ़ाया जा सके। बिंदु आठवां है, मानवतावाद प्रजातंत्रवादी है। इससे आगे बढ़कर वह विश्व जनतंत्रवादी भी है, क्योंकि यह विश्व व्यापी समाज की स्थापना चाहता है और इसके आधार पर ही विश्व शांति, अमर शांति तथा प्रगति चाहता है। विश्वव्यापी समाज की धारणा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मैत्री तथा विश्व बंधुत्व पर ही निर्भर है। साम्यवाद भी मानवतावादी है, परंतु वह तानाशाही को महत्व देता है, जबकि मानवतावाद जनतंत्र का समर्थक है। नवा है, मानवतावाद मानव की बुद्धि तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों का सामाजिक स्तर पर प्रयोग करना चाहता है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से ही यह मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता सुदृढ़ करना चाहता है। यह मनुष्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहता है। यही जनतांत्रिक प्रणाली का उपयोग है। बिंदु दसवां है, मानवतावाद रूढ़िवादी नहीं है। यह वैज्ञानिकता को महत्व देता है, इसलिए सभी मान्यताओं की सार्थकता, निरर्थकता की जांच करता है। यह मानव की बुद्धि का भरोसा रखता है। यह सतत विकास और प्रगति का समर्थक है। अब अगला शीर्षक है, मानवतावाद की परंपरा और प्रकार। किसी ने ठीक ही कहा है कि मानवतावाद और कुछ नहीं, एक दार्शनिक मिजाज है। इसे एक रुझान कह सकते हैं, जो अनेक विचार पद्धतियों में प्रकट की गई है, जैसे फलवाद, प्रैग्मेटिज्म में, अस्तित्ववाद में तथा मार्क्सवाद में अस्पष्टतः देखा जा सकता है। इन सब विचारधाराओं का केंद्र बिंदु मानव ही है। वैसे सामान्य रूप से मानवतावादी परंपरा नवीन होते हुए भी प्राचीन है। यूनान की विचारधारा में ईसा पूर्व पांचवी शताब्दी में प्रोटागोरस को मानववादी विचारक माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मनुष्य सब वस्तुओं का मापदंड है। सुकरात को भी मानवतावादी विचारक कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को अपने आप को जानो का संदेश देकर यह सिद्ध कर दिया था कि मनुष्य का स्थान सर्वोपरि है। प्रकृतिवाद तथा भौतिकवाद भी मनुष्य को प्रमुख स्थान देता है। इन विचारधाराओं के विचारक यद्यपि ईश्वर आत्मा जैसी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु मनुष्य के हित की बात करते हैं। अनिश्वरवादी मत का पोषण करने वाला बौद्ध मत भी मानवतावादी कहा जाता है, क्योंकि अन्य किसी सत्ता के बिना मनुष्य की सत्ता स्वतंत्र है। इसे दुखों से छुटकारा पाना है। मनुष्य अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखकर अपना उद्धार स्वतः कर सकता है। इसी तरह कन्फ्यूशियसवाद तथा ताओवाद भी मानवतावाद का समर्थक है। समकालीन दार्शनिकों में प्रोफेसर बर्टन रसेल मानवतावाद के समर्थक हैं। चूंकि रसेल किसी अप्राकृतिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते, अतः उन्हें प्रकृतिवादी की संज्ञा दी जा सकती है। फलवाद के विचारक जॉन डीवी तथा सीलर मानवतावादी माने जाते हैं। अस्तित्ववाद के समर्थकों में सारत्र मानवतावाद के सबसे बड़े समर्थक माने गए हैं। पृष्ठ संख्या 319। इनका मानवतावाद ईश्वर की सत्ता को बिना स्वीकार किए ही मनुष्य की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा, महत्ता तथा उत्तरदायित्व को महत्व देता है। अमेरिकी दर्शन में मानवतावादी विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक कार्लिस लेमांट हैं। इनका मानवतावाद भौतिकवाद तथा अनिश्वरवाद दोनों को सम्मिलित करता है। उनकी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इनके मानवतावाद को कई नामों से अभिहित किया जाता है। वैज्ञानिक मानवतावाद, धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद, प्रकृतिवादी मानवतावाद या फिर प्रजातांत्रिक मानवतावाद भी कहा जाता है। इनके मूल मंतव्यों को पहले ही दर्शाया जा चुका है। पाश्चात्य परंपरा का प्रभाव ग्रहण करते हुए कुछ आधुनिक भारतीय चिंतकों ने भी मानवतावाद का प्रतिपादन किया है। इन विचारकों में मानवेंद्र नाथ राय का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने अपने दर्शन को नव मानवतावाद या वैज्ञानिक मानवतावाद या अविकल मानवतावाद कहा है। अपने नव मानवतावाद को उन्होंने समाज दर्शन के रूप में स्थापित किया है। राय से अधिकांश रूप में प्रभावित होते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी वैज्ञानिक मानवतावाद का समर्थन किया है। मेरी कहानी में स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि मेरे संस्कार शायद एक हद तक अब भी 19वीं सदी के हैं और मानवतावाद की उदार परंपरा का मुझ पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है कि मैं उससे बिल्कुल बचकर निकल नहीं सकता। नेहरू वैज्ञानिक साधनों का उपयोग मानवता की वृद्धि के लिए करना चाहते हैं, परंतु बहुत स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वे लेमांट तथा राय की तरह पूर्णतया प्रकृतिवादी और अनिश्वरवादी थे कि नहीं। परंतु इतना तो बहुत ही स्पष्ट है कि नेहरू मानवता के सच्चे पुजारी थे। उनका पंचशील का सिद्धांत विश्व शांति का प्रचार तथा धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत मानवतावाद के कवच हैं। अब अगला शीर्षक है प्रकार। मानवतावादी परंपरा को देखते हुए हम इसके विविध रूपों पर दृष्टिपात कर सकते हैं। मानवतावाद सामान्यतः तो मानव हितों को प्रमुख मानता है, परंतु मानव हित दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ईश्वरीय सत्ता को आधार रूप में मानकर और दूसरे मनुष्य अपनी शक्ति और क्षमता के आधार पर अपना हित कर सकता है। इस आधार पर मानवतावाद के दो रूप देखे जाते हैं। प्रथम, धर्म से अनुप्राणित मानवतावाद, जिसमें विश्व के सभी धर्म आते हैं। पारलौकिक हित की चिंता इन धर्मों में अधिक की गई है। वैसे सामाजिक या लौकिक हित की पूर्णतया उपेक्षा नहीं की गई है। इसके अंतर्गत ईश्वरवादी तथा अनिश्वरवादी धर्म जैसे जैन तथा बौद्ध धर्म भी आ जाते हैं। दूसरा भेद धर्म विरोधी मानवतावाद है। इसे धर्मनिरपेक्षतावाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह धर्म से तटस्थ रहता है। ईश्वर और पारलौकिक जगत को इसमें कोई स्थान नहीं है। यह केवल मानव के ऐहिक सुख और हित का समर्थक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ईश्वर तथा धर्म विरोधी है। यह प्रकृतिवादी, जड़वादी तथा प्रजातांत्रिक मानवतावाद है। इसके समर्थक पाश्चात्य विचारकों में जॉन ड्यूबी, सीलर, रसल, सारत्र, लेमांट आदि हैं, और भारतीय चिंतकों में एम एन राय तथा उनसे प्रभावित पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। सही अर्थों में हमारा संबंध मानवतावाद के इसी दूसरे भेद अर्थात धर्म विरोधी मानवतावाद से है। यही मानवतावादी धारणा नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। नए रूप में इसीलिए कि सामान्यतया तो सभी धर्मों में मानव के हित की बात की गई है, परंतु धर्मों में मतैक्य नहीं है। संघर्ष और खून खराबी है। पृष्ठ संख्या 320। दैवी सत्ता पर निर्भरता है। मनुष्य को सर्वोपर स्थान नहीं दिया गया है। उसके इहलौकिक जगत की उपेक्षा करके पारलौकिक जगत को अधिक महत्व दिया गया है। अतः विश्व में एक नए विश्व धर्म की कल्पना की गई। प्राचीन धर्म जो दैवी सत्ता का सहारा लेते हैं या पारलौकिक जगत को महत्व देते हैं, विश्व धर्म का स्थान नहीं ले सकते। कहा जाता है कि इटली में 14वीं 15वीं सदी के लगभग मानवतावाद का प्रचार प्रारंभ हुआ, यद्यपि उस समय धर्मों का विरोध नहीं किया गया था, परंतु शांति और सुरक्षा के लिए धार्मिक सहिष्णुता पर अधिक जोर दिया गया। उसी समय से प्रकृतिवादी विचारधारा ने भी जोर पकड़ा था। आगे चलकर यही मानवतावाद इतना प्रचलित हुआ कि 20वीं सदी में इसे विश्व धर्म के रूप में स्वीकार कर लिए जाने पर जोर दिया जाने लगा। इस अर्थ में मानवतावाद नितांत रूप से पाश्चात्य नवधारणा है, जिसका प्रबल रूप 1933 में घोषणा पत्र के रूप में प्रकट होता है। मानवतावाद की आधुनिक धारणा के पीछे यूरोप और अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था का चरमरा जाना कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय वहाँ की आर्थिक, व्यावसायिक तथा औद्योगिक व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। ऐसी स्थिति में अमेरिकी विचारकों ने जो विज्ञान की उपलब्धियों और अनुभववादी विचारधारा से अधिक प्रभावित थे, यह धारणा बना ली कि मनुष्य बिना किसी दैवी सत्ता के ही अपनी शक्ति और क्षमता के आधार पर अपनी सहायता कर सकता है, प्रगति तथा सुख सुविधा की वृद्धि कर सकता है। इसके संबंध में जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसको संक्षेप में इस प्रकार रखा जा सकता है। इसमें पहला है, आधुनिक विज्ञान के युग में ब्रह्मांड का जो स्वरूप है उसमें किसी दैवी सत्ता को स्थान नहीं है। दूसरा, धर्म अपनी योजनाओं को विज्ञान के आलोक में प्रस्तुत करे। तीसरा, धर्म वह है जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करे, कोई भी वस्तु त्याज्य नहीं है। वास्तविक धर्म में श्रम, कला, दर्शन, विज्ञान, मनोरंजन, मैत्री सभी समाहित हैं, अर्थात मानव जीवन को संतोष देने वाली सभी वस्तुएं धर्म में निहित हैं। मानवतावाद ऐसा ही विश्व धर्म है जो मनुष्य के लिए उपयोगी तथा संतोषप्रद है। चौथा है, मानवतावाद का उद्देश्य स्वतंत्र तथा विश्वव्यापी समाज की स्थापना करना है, जिससे सभी सहयोग तथा मैत्रीपूर्वक रह सकें। इस घोषणा पत्र से प्रभावित होकर सन 1934 में जॉन ड्यूई ने अपने मानवतावादी दृष्टिकोण को ए कॉमन फेथ नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया। इनके अनुसार मानवतावादी धर्म प्रकृतिवादी होता है, मानव आदर्श मूल्यों पर निर्भर है, किसी पराशक्ति की आवश्यकता नहीं है, ऐहिक जीवन को सुधारना इनका लक्ष्य है। परंपरावादी धर्म दैवी सत्ता को महत्व देते हैं, परंतु दैवी प्रकृति को ही अनुकरणीय मानते हैं और पारलौकिक जगत की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। मानव के सहयोग के द्वारा संपूर्ण मानव जात के कल्याण की बात करनी चाहिए। इस अर्थ में मानवतावाद को सर्वोपरि मानकर ड्यूई अनिश्वरवाद को स्वीकार करते हैं। जॉन ड्यूई से प्रभावित होकर कार्लिस लामेंट ने भी मानवतावाद को विश्व धर्म के रूप में स्वीकार किया। लामेंट मानवतावाद को प्रकृतिवादी और वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। इनके अनुसार मानवतावाद किसी दैवी सत्ता को प्रश्रय नहीं देता। इनका मानवतावाद आशावादी है, इसमें दैववाद और नियतिवाद को स्थान नहीं है। मनुष्य स्वतः अपने भाग्य का निर्माता है। इनके प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया जा चुका है। पृष्ठ संख्या 321। भारतीय विचारकों में M.N. राय तथा पंडित नेहरू ऐसे विचारक हैं जिनका मानवतावादी चिंतन डीवी और लेमांट के सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में प्रकट हुआ है। संक्षेप में हम यहाँ इन दोनों विचारकों के मतों का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं। अब शीर्षक है, मानवेंद्र नाथ राय 1889 से 1954 तक। पहले के मार्क्सवादी और बाद के जीवन में अपने को मानवतावादी विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले मानवेंद्रनाथ राय ने अपने मानवतावादी सिद्धांत को नव मानवतावाद अथवा वैज्ञानिक मानवतावाद या अविकल मानवतावाद कहा है। वैसे मानवतावाद प्राचीन परंपरा के रूप में रहा है, परंतु आधुनिक युग में विज्ञान के आलोक में मनुष्य को देखना तथा प्राचीन मिथ्यावादी धारणाओं से मनुष्य को मुक्त करना आवश्यक है। इसी अर्थ में इनका मानवतावाद नव मानवतावाद अथवा वैज्ञानिक मानवतावाद कहलाता है। इनके मानवतावादी विचार न्यू ह्यूमनिज्म तथा रीजन रोमांटिसिज्म एंड रिवॉल्यूशन में मिलते हैं। अन्य मानवतावादी विचारकों की भांति राय भी परंपरावादी धर्म की आलोचना करते हैं और उसके स्थान पर मानव को सच्चे धर्म की ओर आकृष्ट करते हैं। उनके अनुसार धर्म का आधार कोई अलौकिक सत्ता नहीं है, धर्म का आधार मानवता है। पूजा उपासना कर्मकांड जैसी सद्भाव सहयोग मैत्री यही मनुष्य के स्वाभाविक गुण भी हैं और धर्म भी। मानवतावाद ही धर्म का वास्तविक रूप है। राय के मानवतावादी सिद्धांत को निम्नलिखित रूपों में प्रकट किया जा सकता है। इसमें पहला है, मानवतावादी विचारकों ने जहां प्रोटागोरस की इस उक्ति को महत्व दिया था कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मानदंड है, वह राय और उनके अनुयायी एक बात और जोड़ते हैं कि मनुष्य मानव जाति का मूल है। राय का मानवतावाद इन दोनों उक्तियों को स्थान देता है, परंतु दूसरी उक्ति को विशेष महत्व देते हुए कहते हैं कि मनुष्य मानव जाति का मूल है का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने में ही पूर्ण है। उसे समझने के लिए किसी बाह्य सत्ता या अति प्राकृतिक सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। इस अर्थ में राय प्रकृतिवादी हैं और डीवी तथा लामेंट के मार्ग से मानवतावाद तक पहुँचते हैं। इनके अनुसार बिना ईश्वर को माने ही संसार को अच्छा बनाया जा सकता है। इस अर्थ में राय प्रकृतिवादी और अनिश्वरवादी दोनों हैं और उनका मानवतावाद नैतिक तथा धार्मिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इस पर उनका दृढ़ आग्रह है। अब बिंदु दूसरा है, मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मानदंड है। इसका अर्थ राय की दृष्टि में यह है कि मानव होने के नाते हमारा संबंध उन्हीं वस्तुओं से होना चाहिए जिनसे मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। आत्मा ईश्वर जैसी अति प्राकृतिक वस्तुएं जो मानव की चेतना से भिन्न हैं और जिनको वैज्ञानिक ढंग से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर राय मानवतावाद के लिए विज्ञान को आवश्यक मानते हैं। यह विचार भी डीवी और लामेंट के विचारों से मिलता है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु का मानदंड इस अर्थ में है कि मनुष्य का मुख्य संबंध स्वयं मनुष्य से है, किसी रहस्यमयी सत्ता ईश्वर से नहीं है। अब बिंदु तीसरा है, राय के अनुसार मनुष्य का स्वभाव विकासमान भौतिक प्रकृति का परिणाम है। आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में यही सिद्ध किया जा सकता है। मानव स्वभाव के लिए किसी नित्य अविनाशी सत्ता को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान के अनुसंधानों से यही सिद्ध होता है। अतः राय इस अर्थ में भौतिकवादी भी हैं और धर्मनिरपेक्षवादी भी। पृष्ठ संख्या 322। बिंदु चौथा है, भौतिक तथा जैविक विज्ञानों की खोज से यह सिद्ध हो चुका है कि मानव प्रकृति का मूल आधार और तत्व उसकी बुद्धि है। प्रवृत्तियों, भावनाओं अथवा आत्मा को तत्व के रूप में नहीं माना जा सकता। मनुष्य में स्वतंत्रता की आकांक्षा है। सत्य की खोज मानव स्वभाव की मूल प्रेरणा है। मानवतावाद का उद्देश्य समाज में व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षण देना है, सुरक्षित करना है। बिंदु पांचवा है, परंपरावादी धर्म मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक सिद्ध हुआ है। धर्म ने बुद्धिवादी स्वरूप को खो दिया है। कठोरता और कट्टरता के कारण मानव स्वतंत्रता में बाधा आई है। अतः परंपरावादी धर्म के स्थान पर नव मानवतावाद को प्रतिष्ठापित किया जाए। बिंदु छठवां है, राय मानवतावादी समाज के निर्माण के लिए वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं। प्रार्थना, जादू, स्तुति, यज्ञ, देवी देवता, हवन आदि के स्थान पर उर्वरक, सिंचाई तथा खनिज पदार्थों के उपयोग से समाज को समृद्ध तथा सुखपूर्ण बनाया जा सकता है। सातवां है, राय का भौतिक मानवतावाद मानव की स्वतंत्रता में विश्वास करता है और इसके लिए दो बातें प्रमुख रूप से आधार रूप में है। प्रथम यह कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्धारण स्वतः करता है, इसलिए उसे पूर्ण स्वतंत्रता का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। दूसरे यह कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किसी अतिमानवीय सत्ता में विश्वास नहीं करना चाहिए। आठवां है, नव मानवतावादी समाज व्यवस्था औपचारिक प्रजातंत्रवाद पर नहीं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होगी। इसमें प्रजातंत्रवाद के दोष नहीं होंगे। मानवतावादी आधारों पर प्रबुद्ध, स्वतंत्र एवं नैतिक व्यक्ति के हाथों में शासन होगा, पार्टी के हाथों में नहीं। राय का यह प्रजातंत्र लेमांट और डीवी के प्रजातंत्र से भिन्न है। अब अगला शीर्षक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का वैज्ञानिक मानवतावाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानवतावाद जॉन ड्यूवी तथा लामेंट की कड़ी में ही वैज्ञानिक, प्रजातांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्षवादी है। उनकी मानवतावाद की पृष्ठभूमि एक तो विदेशों में रहने, वैज्ञानिक अन्वेषणों से प्रभावित होने तथा बौद्धिक वातावरण में जीवन व्यतीत करने से, तथा दूसरी ओर धर्माश्रित मानवतावादी गांधी तथा टैगोर से प्रभावित होने से तैयार हुई है। परंतु पहले वाली स्थिति उनके विषय में अधिक लागू होती है। उनकी रचनाओं को देखने से ऐसा लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से तो वे वैज्ञानिक मानवतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी या प्रकृतिवादी मानवतावाद के समर्थक थे। परंतु बहुत से प्रमाण और उनके कथन मिल सकते हैं जिनसे यह भी पता चलता है कि भीतर से गांधी या भारत की प्राचीन धरोहर, संस्कृति और धर्म से वे कम प्रभावित नहीं थे। अतः उनका मानवतावाद परंपरावादी धर्म की मानवता से भी प्रभावित है। अधिकांश रूप में लोग मनमाने ढंग से उनके वैज्ञानिक मानवतावाद के उदाहरणों को ही छांट लेते हैं और उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम यहाँ इस विवाद में न पढ़कर उन्हें वैज्ञानिक मानवतावादी के रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। नेहरू वेदांत के धर्म को तो स्वीकार करते हैं, परंतु सामान्यतः मजहबी ख्याल उन्हें ठीक नहीं जचता। इन मजहबी विचारों के विरोध में उन्हें मानवतावादी दृष्टि ही सच्चा धर्म लगता है। यदि यही विश्व धर्म बन जाता तो संसार से झगड़े समाप्त हो जाते, शांति फिर विश्व शांति का आधार पक्का हो जाता। नेहरू ने अन्य मानवतावादियों की तरह परंपरावादी धर्म का निषेध किया है। हम क्रमशः उनके इन मानवतावादी दृष्टिकोणों को निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 323। इसमें पहला बिंदु है परंपरावादी धर्म का निषेध। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में मजहब के और कम से कम मौजूदा रूप में संगठित मजहब के दृश्य ने मुझे भयभीत कर दिया है। मैंने उसकी कई बार निंदा की है और उसको जड़ मूल से मिटा देने की इच्छा की है। मुझे तो लगभग हमेशा यही मालूम हुआ कि अंधविश्वास और प्रगति विरोध जड़ या प्रमाण रहित सिद्धांत और कट्टरपन, अंधश्रद्धा और शोषण नीति और न्याय अथवा अन्याय से स्थापित स्वार्थों के संरक्षण का ही नाम धर्म है। परंतु आगे उनका कहना है कि वास्तविक धर्म तो कुछ और ही है, जो लोगों को शांति देता है। ऐसे धर्म को नेहरू जॉन ड्यूवी की परिभाषा के रूप में मानते हैं। अब बिंदु दूसरा है मानवतावादी धर्म की धारणा। जॉन ड्यूवी की धर्म की धारणा का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि धर्म वह चीज है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है, या फिर जो प्रवृत्ति व्यक्तिगत हानि होने की आशंका होने पर भी और बाधाओं के विरोध में भी किसी आदर्श लक्ष्य को पाने के लिए जारी रखी जाती है और जिसके पीछे यह विश्वास हो कि वह सामान्य और अस्थाई उपयोगिता वाली है, वही स्वरूप में धार्मिक है। अगर धर्म यही चीज है तो निश्चय ही उस पर किसी को भी कुछ ऐतराज नहीं हो सकता। पुनः नेहरू रोमा रोला के कथनों का उद्धरण देते हुए अपने मानवतावादी धर्म की पुष्टि करते हैं। रोमान रोला ने भी धर्म का ऐसा अर्थ निकाला है जिसे शायद संगठित मजहब के कट्टर लोग भयभीत हो जाएंगे। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो सभी तरह के धार्मिक विश्वासों से दूर हैं, या उनका ख्याल है कि वे दूर हैं, लेकिन वास्तव में उनमें एक अतिबौद्धिक चेतना व्याप्त रहती है जिसे वे समाजवाद, साम्यवाद, मानव हितवाद, राष्ट्रवाद या बुद्धिवाद भी कहते हैं। विचार का लक्ष्य क्या है, इसकी अपेक्षा विचार किस कोटि का है, यह देखकर हम निर्णय कर सकते हैं कि वह धर्म प्रसु है या नहीं। अगर यह विचार हर तरह की कठिनाई सहकर एक निष्ठ लगन और हर तरह के बलिदान की तैयारी के साथ सत्य की खोज की तरफ निर्भयता पूर्वक ले जाता है तो मैं उसे धर्म कहूँगा, क्योंकि धर्म के अंदर यह विश्वास शामिल है कि मानवीय पुरुषार्थ का ध्येय मौजूदा समाज के जीवन से बल्कि सारे मानव समाज के जीवन से भी ऊंचा है। नास्तिकता भी, जब वह सर्वांशतः सच्ची बलवती प्रकृतियों से निकलती है और जब वह निर्बलता का नहीं बल्कि शक्ति की एक मूर्त रूप होती है, तो वह भी धार्मिक आत्मा की महान सेना के प्रयाण में शामिल हो जाती है। नेहरू इसी मानवतावादी धर्म को स्वीकार करते हुए कहते हैं, मैं नहीं कह सकता कि मैं रोमान रोलान की इन शर्तों को पूरा ही करता हूँ, लेकिन इन शर्तों पर तो इस महान सेना का एक तुच्छ सैनिक बनने को मैं तैयार हूँ। अब तीसरा बिंदु है वैज्ञानिक मानवतावाद। नेहरू लामेंट की भांति वैज्ञानिक मानवतावाद को महत्व देते हैं। पुरानी समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान ढूंढना वर्तमान युग का स्वभाव बन गया है। सच्चा वैज्ञानिक ही सच्चा धार्मिक है। नेहरू के विचार में मानवतावाद और वैज्ञानिक स्वभाव दोनों में समन्वय बढ़ रहा है और एक ढंग का वैज्ञानिक मानवतावाद पैदा हो रहा है। पृष्ठ संख्या 324। पुनः कहते हैं, आज का जिज्ञासु वैज्ञानिक पुराने युग के दार्शनिक और धार्मिक व्यक्तियों की ही प्रतिमूर्ति है। नेहरू आइंस्टीन की उक्ति को उद्धृत करते हुए वैज्ञानिक अन्वेषकों को धार्मिक मानते हैं। आइंस्टीन कहते हैं, हमारे इस जड़वाद के युग में सिर्फ जिज्ञासु वैज्ञानिक अन्वेषकों में ही गहरी धार्मिकता है। हिंदुस्तान की कहानी में नेहरू वैज्ञानिक युग की विशेषता में मानवतावाद को एक मुख्य तत्व मानते हैं और यह मानवतावाद परंपरावादी धर्म नहीं विश्व धर्म का दर्जा ले रहा है और विज्ञान के सहयोग से संचालित हो रहा है। उनका कहना है कि इस जमाने का दिमाग, यानी आज का ऊंचे दर्जे का दिमाग व्यवहारिक है और कौशल युक्त है, नैतिक है और सामाजिक है, परोपकारी है और मानवतावादी है। उसका संचालन सामाजिक उन्नति के अमली आदर्शवाद से होता है। पुराने लोगों के दार्शनिक ढंग को, उनका अंतिम सत्य की खोज को बहुत हद तक छोड़ दिया गया है। साथ ही मध्ययुग का भक्तिवाद और रहस्यवाद छोड़ दिया गया है। उसका ईश्वर है मानवता है और उसका धर्म है समाज सेवा। बिंदु चौथा है विश्वव्यापी मानवतावाद। मानवतावाद की सबसे बड़ी विशेषता विश्व को मानवतावाद की गोद में उठा लेना है। लामेंट की तरह नेहरू भी ऐसे मानवतावाद की आकांक्षा करते हैं। उनका कथन है कि हमारा अंतिम ध्येय तो यही हो सकता है कि एक वर्गहीन समाज स्थापित हो जिसमें सबको समान न्याय और समान सुविधा प्राप्त हो, जिसमें मनुष्य जाति को भौतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऊंचा उठाने और उसमें सहयोग, निःस्वार्थ सेवा भाव, सत्यनिष्ठा, सद्भाव और प्रेम के आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि करने और अंत में एक संसार व्यापी समाज की स्थापना करने की सुनिश्चित योजना हो। अब बिंदु पांचवा है प्रकृतिवादी मानवतावाद। नेहरू लामेंट की तरह प्रकृतिवादी मानवता को महत्व देते हैं। मनुष्य को प्रकृति से अलग मानकर दूरी रखना ठीक नहीं है। प्रकृति के विकास के साथ मानव का विकास हुआ है। इस धारणा के समर्थन में कि प्रकृति और मनुष्य के बीच अंतर नहीं है, नेहरू जेम्स जिंस को उदाहरित करते हैं और उसे अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि पिछले 25 वर्षों में भौतिक दुनिया के बारे में वैज्ञानिक के दिमागी नक्शे में काफ़ी तब्दीली हुई है। विज्ञान की दृष्टि में मनुष्य और प्रकृति करीब करीब दो अलग चीज़ें थीं, लेकिन अब सर जेम्स जिंस कहते हैं कि मनुष्य अब प्रकृति को अपने से अलग नहीं देखता, बाह्य आंतरिक का ही हिस्सा है और जो कुछ हम देखते हैं या सोचते हैं वह सब हमारे मस्तिष्क का ही प्रकटीकरण है और विश्व और प्रकृति और आत्मा और मन और शरीर, अंतरंग और बहिरंग सब बुनियादी तौर पर एक ही चीज हैं। हम अपने दिमाग के संकीर्ण घेरे में इस विशाल योजना को किस तरह समझेंगे? विज्ञान ने इन समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। नेहरू के इन कथनों से एक और प्रकृतिवाद का समर्थन मिलता है तो दूसरी ओर प्रकृति और अध्यात्म का समन्वय भी मिलता है। अब बिंदु छठवां है, अनिश्वरवादी मानवतावाद। आधुनिक मानवतावादी विचारकों की श्रेणी में चाहे वे लामेंट और ड्यूबी हो, चाहे M.N. राय हो, नेहरू भी आते हैं। उन्हें भी परलोक, ईश्वर आदि में विश्वास नहीं है, क्योंकि मानवतावाद की समस्या इस लोक की समस्या है। इस लोक को रहने योग्य बनाना, मानव को ही ईश्वर समझना अधिक अच्छा है। पृष्ठ संख्या 325। परंपरावादी धर्म तो पलायन सिखलाते हैं। इस संबंध में नेहरू का स्पष्ट कथन है कि मुझे परलोक या मृत्यु के बाद क्या होता है इसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस जीवन की समस्याएं ही मेरे दिमाग को व्यस्त करने के लिए काफ़ी मालूम होती हैं। मुझे तो चीनियों की परंपरा से चली आई जीवन दृष्टि, जो कि मूल में नैतिक है लेकिन फिर भी अधार्मिकता या नास्तिकता का रंग लिए हुए है, पसंद आती है। पुनः आगे कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जीवन को समझा जाए, उसको त्यागा नहीं बल्कि उसको अंगीकार किया जाए, उसके अनुसार चला जाए और उसको उन्नत बनाया जाए। मगर आम धार्मिक दृष्टिकोण इस लोक से नाता नहीं रखता। मुझे वह अस्पष्ट विचार का दुश्मन मालूम होता है। वह संकीर्ण है और अपने से भिन्न रायों या विचारों को सहन नहीं करता। वह स्वार्थपरता और अहंकार से पूर्ण है और अक्सर स्वार्थी और अवसरवादी लोगों को अपने से अनुचित फायदा उठाने देता है। बिंदु सातवां है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व शांति तथा मानव सुखोन्मुखी तथा प्रजातांत्रिक मानवतावाद। नेहरू का मानवतावाद विश्व बंधुत्व को महत्व देता है। विश्व बंधुत्व को भावना तब उत्पन्न होगी जब मनुष्य परंपरावादी धर्म की संकीर्णता से मुक्त होकर मानव हित और सुख का दृष्टिकोण अपनाएगा। मानव जाति को सुखी बनाना जितना विज्ञान के साधनों के उपयोग पर निर्भर है, उतना ही उसे विचारों और कार्यों में शांति देकर भी सुखी किया जा सकता है। यह शांति सह अस्तित्व और अंतर संबंधों पर भी निर्भर है। युद्ध निरीह मानव की विनाश लीला का एक उपाय है। यह समस्या सत्ता लोलुप नेताओं के अहम के कारण उत्पन्न होती है। यदि विश्व प्रजातांत्रिक आधार पर समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व को अपनाए तो विश्व शांति संभव हो सकती है, मानव जीवन सुखी हो सकता है, उद्योग धंधे बढ़ाए जा सकते हैं, संपन्नता आ सकती है और गुटों तथा वर्गों में बटती हुई मानव जाति को संगठित किया जा सकता है। पूंजीवाद मानवतावाद का शत्रु है। सत्ता और अधिकार पूंजीवाद की धरोहर है। मानवतावाद की स्थापना इस संकीर्ण व्यवस्था के रहते नहीं हो सकती। मानवतावाद की रक्षा के लिए ही नेहरू ने अपनी विदेश नीति में पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्ष का सिद्धांत अपनाया। किसी गुट को महत्व न देना, उसका निषेध करना है। पंचशील सिद्धांत विश्व शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, सह अस्तित्व के लिए तथा मानव जीवन में शांति लाने के लिए ही है। पंचशील के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। इसमें पहला है, एक दूसरे देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए समादर। दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा है अहस्तक्षेप। एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे। चौथा है समानता और आपसी सहयोग। और पांचवा सिद्धांत है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब बिंदु आठवां है सहिष्णुता, सहृदयता तथा उदारता। मानवतावाद का मुख्य आधार सहिष्णुता, सहृदयता तथा मानव मात्र के प्रति उदारता का भाव है। नेहरू के पंचशील में ये तीनों तत्व दिखाई देते हैं। इन्हीं से सह अस्तित्व की भावना आ सकती है। इसी के आधार पर विश्व राज्य की कामना की जा सकती है। नेहरू बार बार मिलीजुली संस्कृति की चर्चा अपनी रचनाओं में करते हैं। यह साम्यवाद की ही पृष्ठभूमि है। मानवता की रक्षा का एक उपाय है। विश्व समाज और विश्व राज्य की आशा करते हुए पंडित नेहरू कहते हैं कि हम उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मानव जाति की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति में सारी राष्ट्रीय संस्कृतियां घुल मिल जाएंगी। इसलिए हमको जहां कहीं भी ज्ञान, विज्ञान, मित्रता और सहयोग या इनमें से एक चीज भी मिलेगी, हम उसको अपनाएंगे और साथ ही हम दूसरों के साथ मिलकर ऐसे कामों को करेंगे जिनसे सबका हित हो। इस तरह हम सच्चे हिंदुस्तानी और एशियाई होंगे और साथ ही हम भले अंतर्राष्ट्रीयतावादी होंगे और दुनिया के नागरिक होंगे। पृष्ठ संख्या 326। अब अगला शीर्षक है मानववाद की समीक्षा। मानवतावाद दर्शन और धर्म के क्षेत्र में एक नवीन धारणा है। वैसे तो मानवतावाद सामान्य रूप से उतना ही प्राचीन विचार है जितना मानव इतिहास, परंतु जिस मानवतावाद का जन्म दर्शन, विज्ञान और धर्म के विचार से हुआ है, वह तो नवीन ही है। आज के विविधता पूर्ण युग में मानवतावाद का संदेश निसंदेह बहुत उपयोगी है। यह मानव को स्वावलंबी बनाने पर जोर देता है। परंपरावादी धर्मों की संकीर्णता से बचाकर मानव तथा मानवता की प्रतिस्थापना करता है। मानवता स्वयं में एक मूल्य है। मानवतावाद को इस मूल्य का संरक्षक कहा जा सकता है। यह सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल देता है। मानव के जीवन को कर्मठ बनाता है। जीवन में सुधार करने की पुकार करता है। मानवतावाद जगत के प्रति आस्था सुदृढ़ करता है। यह वही कार्य कर रहा है जो परंपरावादी धर्म मानव के लिए करते आ रहे हैं। धर्माश्रित मानवतावाद से यदि ईश्वर तथा पारलौकिक जगत को निकाल दिया जाए तो जो बचता है वह शुद्ध आधुनिक युग का मानवतावाद ही रह जाता है। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद जब यह घोषणा करते हैं कि मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ जो हम लोगों में आत्मविश्वास तथा जातीय मर्यादा बोध जगाने और जनगण को अन्न, वस्त्र और शिक्षा देने और हमारे चारों ओर की सभी दुख वेदनाओं को दूर करने की शक्ति ला दे, यदि भगवान को लाभ करना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो, तो इसी मानवतावाद की घोषणा करते हैं। परंतु सर्वविदित है कि स्वामी विवेकानंद ने धर्म से ईश्वर, आत्मा तथा पारलौकिक जगत, कर्म तथा पुनर्जन्म को अस्वीकार नहीं किया है। फिर भी उनके मानवतावाद में वही दम है, वही पुकार है, वही क्षमता है जिसे आज के मानवतावादी चाहते हैं। यह मानवतावाद धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, परंतु धर्मनिरपेक्षता का यह अर्थ नहीं कि धर्म से तटस्थ हो जाए या धर्म का निषेध कर दे। इसका अर्थ तो धर्मों के प्रति सहिष्णु होना है, सापेक्षवादी दृष्टिकोण रखना है। गांधी भी किसी अर्थ में कम मानवतावादी नहीं है, परंतु इस आधुनिक अवधारणा को वे स्वीकार नहीं कर सकते। क्या मानवतावाद धर्म का विकल्प हो सकता है, या क्या यह विश्व धर्म के रूप में अपना स्थान बना सकता है? यह प्रश्न विचारणीय है। इस संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह धर्म का स्थान नहीं ले सकता। इसमें पहला बिंदु है, धर्म में जो मौलिक तत्व है और जिसके लिए मनुष्य अपने जीवन की सार्थकता समझता है, जिसके लिए उसके भीतर छटपटाहट होती है, जिसके लिए लोक कल्याण, लोक सेवा करता है, वह है अनुभवातीत सत्ता। इसी से नियंत्रित होकर मनुष्य कार्य करता है, परंतु मानवतावाद उसी को अस्वीकार करता है। अतः मानवतावाद सभी अच्छाइयों से सुसज्जित होते हुए भी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। विश्व धर्म होने की बात तो बहुत दूर की है। बिंदु दूसरा है, मानवतावाद में वास्तविक धर्म की अर्जनशीलता तथा उत्तेजना का पूर्णतया अभाव है। पृष्ठ संख्या 327। डीएम एडवर्ड ने ठीक ही कहा है कि मानवतावाद केवल बौद्धिक विवेचना का विषय बनकर रह जाता है, यह धर्म का स्थान नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा धर्म जैसे कामटे का मानवतावाद, जो जल थल में कभी नहीं था और न जिसमें वास्तविक धर्म की सृजनशीलता तथा उत्तेजना ही प्राप्त होती है। बिंदु तीसरा है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पुस्तक जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि में मानवतावाद की आलोचना करते हुए कहा है कि जीवन के मूल्य तभी सार्थक सिद्ध होते हैं जब धर्म उन्हें अतींद्रिय सत्य से संबद्ध करता है। मानवतावाद भी मूल्य को स्वीकार करता है, परंतु वह अतींद्रिय सत्ता को नकार देता है। अतः मूल्यों के प्रति हमारी आस्था न सबल होगी और न अस्थाई ही। अतः मानवतावाद को धर्म का स्थान या विश्व धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। बिंदु चौथा है, मानवतावाद भौतिकवादी धारणा को स्वीकार करता है और यह मानता है कि जीवन का विकास स्वतः प्रकृति में निहित नियमों के द्वारा होता है, परंतु पदार्थ में विकास का कोई सिद्धांत नहीं है। जड़ से जीवन का विकास संभव नहीं कहा जा सकता। मनुष्य की पहचान और उसका मूल लक्षण नैतिकता है, परंतु इंद्रियों से युक्त मनुष्य के जीवन में नैतिकता की भावना स्वयं नहीं उत्पन्न हो सकती। इसके लिए आवश्यक है यह मानना कि नित्य चेतन शक्ति जड़, वनस्पति, पशु और मनुष्य में अव्यक्ति हो रही है। उसी नित्य चेतन सत्ता से जीवन जगत की व्याख्या हो सकती है। मानवतावाद उच्चतर की व्याख्या निम्नतर से करते हैं, जैसे जड़ से चेतन की व्याख्या करते हैं, जबकि उच्चतर से निम्नतर की व्याख्या बुद्धि में आने योग्य है। इस चेतन को बिना माने मानवतावाद को धर्म के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। बिंदु पांचवा है, मानवतावादी वैज्ञानिक पद्धति पर जोर देते हैं, परंतु विज्ञान प्राकृतिक व्यापार को समझने के लिए तो आवश्यक कहा जा सकता है और उपयोगी भी, परंतु उसके द्वारा आध्यात्मिक सत्य का अनुसंधान नहीं किया जा सकता। यदि मानवतावाद केवल वैज्ञानिक पद्धति और विज्ञान को लेकर मानवता की रक्षा और विकास करना चाहता है तो यह संभव नहीं कहा जा सकता। मानव की समस्या का समाधान मनुष्य की आंतरिक वृत्ति के नियंत्रण के आधार पर की जा सकती है और यह नियंत्रण बिना निष्ठा के संभव नहीं है। पुनः निष्ठा किसी आंतरिक लक्ष्य को लेकर उत्पन्न होती है। वह निष्ठा धार्मिक सत्य को स्वीकार करने पर आती है। उसे विज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। अब बिंदु छठवां है, मानवतावादी अपने सिद्धांत का आधार मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है को मानते हैं, परंतु इस आदर्श का निर्वाह किया ही नहीं। मनुष्य को प्रत्येक वस्तु का मापदंड बनाने में तब सफल होते जब बाह्य जगत या प्रकृति का अध्ययन मनुष्य के द्वारा करते, न कि प्रकृति द्वारा मनुष्य का अध्ययन। प्रकृति मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य प्रकृति के लिए। सच्चा मानववादी मनुष्य को सर्वोपरि मानता है। मानववाद इस लक्ष्य में विफल कहा जा सकता है। बिंदु सातवां है, परंपरावादी धर्मों में चाहे जो भी विभेद हो, परंतु एक अर्थ में तो उनकी एकता की। सभी आस्तिक और अनिश्वरवादी धर्म लौकिक जगत से परे के जीवन में आस्था रखते हैं। सारी बुद्धिवादिता और नैतिकता की पूर्ति बिना उसके नहीं हो सकती। धर्म मनुष्य की अंतर्हित दैवी सत्ता की अनुभूति है। मानवतावाद मानव की सभी आकांक्षाओं की पूर्ति तो करना चाहता है, परंतु मनुष्य को इस आंतरिक पिपासा की शांति से उसे रोक देना चाहता है। फिर मानवतावाद को मानव का कल्याण चाहने वाला कैसे कहा जा सकता है? पृष्ठ संख्या 328। मनुष्य में जैसे भूख प्यास नींद की आंतरिक प्रेरणा और इच्छा होती है और उसकी पूर्ति की वस्तुओं से उनकी पूर्ति होती है, उसी प्रकार उसके अंदर श्रद्धा प्रेम भक्त की आंतरिक इच्छा होती है और इसकी पूर्ति धर्म में ही होती है। क्या मानवतावादी मनुष्य को इनसे वंचित करके मानव के प्रति ईमानदारी कर सकते हैं? निश्चित रूप से मनुष्य के इन आकांक्षाओं की पूर्ति मानवतावादी नहीं कर पाते, अतः इसे धर्म या विश्व धर्म नहीं बनाया जा सकता। बिंदु आठवां है, मानवतावाद मानव की स्वतंत्रता का समर्थक है, परंतु उसका स्वतंत्रता संबंधी विश्लेषण पर्याप्त और पूर्ण नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता का यह अर्थ पर्याप्त नहीं है कि यह प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों को नियंत्रित करने की शक्ति है। क्या यह सही नहीं है कि समुद्र, पर्वत, शीत, गर्मी, राज्य, परिवार, कानून ही केवल हमारी स्वतंत्रता की बाधाएं नहीं हैं, बल्कि हमारी क्षुद्रतम वासनाएं और तृष्णाएं ही वास्तविक बाधाएं हैं। वास्तविक स्वतंत्रता मनुष्य को तब मिल सकती है जब वह इन आंतरिक निम्नतम वृत्तियों से छुटकारा पाए और इन वृत्तियों को उच्चतर जीवन का साधन बनाए। मानवतावादी इस आंतरिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं करते। बौद्ध और जैन धर्मों ने मनुष्य को यही तो सिखाया है। आत्म अनुशासन ही स्वतंत्रता है। यह संयम, बृहत्तर दृष्टिकोण और उच्चतर लक्ष्य धर्म से ही संभव है। अब बिंदु नौवां है, मानवतावादी अपने विचारों को बुद्धि पर आधारित करते हैं। फिर तो यह सिद्धांत बुद्धि को ग्रहण होना चाहिए, परंतु सत्य तो यह है कि मानवतावाद का सिद्धांत साधारण व्यक्तियों को तो लुभावन और आकर्षक लगता है, किंतु एक चिंतक तथा बुद्धिवादी की बुद्धि में यह बात नहीं आती कि मनुष्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित है। बुद्धि से तो यही समझ में आता है कि मनुष्य भौतिक जीवन से खाने पीने से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य की कल्पना, सर्जना, कला और इनसे ऊपर आध्यात्म का क्षेत्र है, वहाँ भी शांति मिलती है। सत्य के प्रति संघर्ष करके भी सुख मिलता है। केवल प्रत्यक्ष जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र से सुख का बोध नहीं होता। मनुष्य को सुख तथा सीमित करना मानवतावाद का एकांगीपन है। सुख तो पशु जीवन तक अर्थात पार्श्विक वृत्तियों की संतुष्टि तक सीमित है, इसके भी परे आनंद की स्थिति होती है, जो धर्म के क्षेत्र में मिलती है। मानवतावाद मनुष्य को इससे वंचित करने का एक प्रयास है, ऐसा सिद्ध होता है। अब बिंदु दसवां है, मानवतावाद की यह कहकर भी आलोचना की जाती है कि यह एक दर्शन, विचार या रुझान है, इसे धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में इसे विश्व धर्म के रूप में कैसे स्वीकार किया जा सकता है? सारांश यह है कि मानवतावाद एक आदर्श, विचार या दर्शन हो सकता है और मानव कल्याण भी इससे उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार विज्ञान करता है, परंतु धर्म के स्थान पर विश्व धर्म के रूप में इसे प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। अध्याय 21 समाप्त।